परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए विष्णु पुराण में सृष्टि प्रक्रम के निरूपण के बाद विभिन्न राज वंशों का निरूपण आता है। कौन कौन से राजा हुए, इसमें दो प्रकार के राजाओं का वर्णन है। एक तो सूर्यवंशी राजा है और कुछ चंद्रवंशी राजा है। तो सूर्यवंशी राजा में राम इत्यादि का वर्णन आता है, दिलीप का वर्णन आता है, अज का वर्णन आता है, रघु का वर्णन आता है, भगीरथ का वर्णन आता है। ऐसे विविध राजाओं का वर्णन है जो सूर्य के वंश में उत्पन्न हुए। फिर सूर्य की शक्ति और वैष्णवी शक्ति का भी वर्णन आता है। फिर विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है कि हमारे कर्म हमें नरक में ले जाते हैं, तो किन प्राणियों को कौन सा नरक मिलता है, कैसा कर्म होता है तो कैसा नरक मिलता है। यदि आप लोग नरक सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा, अन्यथा नरक में नरक की चर्चा करना भी कठिन बात है, क्योंकि न ब्रूया सत्यम अप्रियम, अप्रिय बात जब बोली जाती है तो लोगों को सहन नहीं होता है। तो ऐसे अप्रिय बात क्यों कहा जाए, वैसे ही लोग कथा सुनना कम पसंद करते हैं। फिर राजा वेन का भी चरित्र है, पृथु का भी चरित्र है जो पूर्व के पुराणों में आ गया है, और ध्रुव का वनगमन है, ध्रुव जी का चरित्र है। ये सब भी चरित्र प्रायः सभी जगह सुनाए जाते हैं। ध्रुव के विषय में आप जानते हैं कि ध्रुव जी अपने विमाता के चलते ध्रुव पद को प्राप्त हुए। व्यक्ति की जितना ही अपमान होता है वह व्यक्ति ही उतना ही निखरता है, और जितना ही सम्मान मिलता है उतना ही खा पी के सोए रहता है। इसलिए कहा, अपमानात् च तपो वृद्धि, सम्मानात् च तपश्चयः। अपमान से तपस्या में वृद्धि होती है, और जब सम्मान होता है तो व्यक्ति आराम की रोटी खा के सो जाता है। कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा रूपी जो सर्पिणी है, सभाओं में माला पहना दिया जाता है, वह वैसा ही है जैसे बलि के बकरे की पूजा करके आगे आहार दे करके उसका गर्दन काट दिया जाता है, उससे वो कम नहीं है। महाराज हम आपकी पूजा करते हैं क्यों, हाँ तो अपनी तपस्या आप हमें दे दीजिए, हमारा ये काम हो जाए। तो जो सम्मान है उस सम्मान से हमेशा घबराते हैं संत लोग कि कहीं प्रतिष्ठा आ जाए तो हमारा लोक में अभिनिवेश न बढ़ जाए, लोक में हमारी प्रतिष्ठा की कामना न बढ़ जाए। और प्रतिष्ठा की कामना बढ़ जाएगी तो हम चाहेंगे कि लौकिक कार्य मिले, लौकिक यश मिले, और यश में मन फंस जाएगा, और उसके बाद पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा जैसे किसी कमंडल में नीचे छिद्र हो गया हो, आप ऊपर से जितना भी पानी भरो उसका कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे सब चला जाता है। उसी तरह से जो तपस्वी लोग हैं उनकी तपस्या वो बड़ी ही बहुमूल्य वस्तु है, और यति के लिए तो विशेष करके इस विष्णु प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा कहा है। सुकर का विष्ठा वो भी सामान्य नहीं, सुकर सबका मैला खाता है। तो समाज के जो लोग है वो जो कार्य करते हैं उस कार्य के करने से, क्योंकि उनमें कृत्याकृत विवेक नहीं होता कि हम क्या करें क्या ना करें, ना करने वाला भी करके आते हैं और महात्मा से कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो। तो अब महाराज जब अपना आशीर्वाद देंगे तो महाराज के पास वो जितना पाउडर बनाया हुआ है तपस्या रूपी, वो उनके पाप को छालन करेगा तो महाराज का तपस्या रूपी जो पाउडर है वो नष्ट हो जाएगा, और उनकी जो पाप की पोटली है वो महाराज के पास आ जाता है। तो ये जो है ना सुकरी विष्ठा, मतलब सुकर तो गांव को साफ करता है, लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं कि अन्य भी पाप ले आकर के महाराज के यहाँ डाल जाते हैं। इसलिए किसी का लेना बड़ा कठिन काम है, लेने से घबराते हैं, कहते हैं कि वहां दे दो, और उनको कह देंगे कि वहां कर दो, चलो उनका उनको दे दो, उनका उनको दे दो, तो ये विनिमय हो जाता है। अपने लिए क्या है, बस अपने यहां बैठे हुए हैं। और यति के लिए संग दोष के लिए तो बड़ा वर्जन बतलाया कि यति को संग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि यति सन्यासी को संग हो गया तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ एक महर्षि सौभरी हैं, उन सौभरी का चरित्र आता है विष्णु पुराण के अंतर्गत, काफी आगे है वो, क्योंकि हम इसमें एक एक दो दो जितने अंश हैं इसमें पांच छह अंश हैं, छह अंश में से मैं चार अंश का पारायण कर चुका हूं, क्योंकि ये जो विष्णु पुराण है ये पत्रावली बद्ध नहीं है, इसलिए हम इसमें गति होती है और पत्रावली में गति नहीं होती है। तो महर्षि सौभरी का आख्यान है, सौभरी जो थे वो सूर्य वंश में ही पैदा हुए, और होता क्या है कि उनको जल समाधि की सिद्धि है कि जल में जाकर के समाधि लगा लेते हैं, जल के भीतर रहते हैं, तपस्या करते हैं। 10,000 वर्षों तक सौभरी ऋषि ने तपस्या किया जल के भीतर। उन्होंने देखा कि एक जो मछली है वह अपने परिवार के साथ विहार कर रही है जल में, उसके पुत्र बच्चे पत्नियां और उनके साथ वो दिन भर खेलता है, मजाक करते रहता है, जैसे गृहस्थ लोग अपने पत्नियों के साथ मजाक किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी सत्यभामा जी के साथ, रुक्मिणी जी के साथ मजाक का प्रकरण भागवत में आता है। अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिना, जो घर में रहने वाले का क्या क्या है कि पति पत्नी इत्यादि संतानों के साथ उनको मजाक करने में समय व्यतीत हो जाता है। तो वैसे ही वो देखते थे कि ये मत्स्य बड़ा सुखी है, इसके पास बाल हैं, बच्चे हैं, हम भी क्यों ना इसी तरह कुछ करते, इसका जीवन धन्य है, हम तो इतना तपस्या किए और अकेले इस जल में पड़े हुए हैं। उनके मन में विचार आता है, वो मछली को देख करके जब उनके मन में विचार आया तो राजा के पास जाते हैं और राजा के पास कहते हैं कि आप हमारी शादी करवा दो। राजा सोचता है ये 60 साल का बुढ़ा, अब इसको यदि मैं शादी करने के लिए किससे कहूं, और यदि ना कहता हूं तो शाप दे देंगे ये, तो भी गड़बड़ है। दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहां जाएं अब। सोचा महाराज, सिर नीचे करके चिंतन करने लगे। पूछा, अरे भाई क्यों आप चिंतन कर रहे हो। इक्ष्वाकु की बात थी, वो इक्ष्वाकु जो थे ना वो मनु के छींक लेने से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा था। तो कहा कि भाई अब तो बड़ी गड़बड़ हो गया, सिर नीचे की तरफ झुका दिया। महर्षि होशियार थे, सब समझ गए, कहे कि ऐसा है कि तुम्हारे पास कोई समस्या हो तो बताओ, सिर नीचे मत करो। कहा महाराज, समस्या एक ही है कि हमारे यहाँ कन्याएं जो है वो पसंद करती है, यदि आपको पसंद कर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहा कोई बात नहीं है, आप हमारी व्यवस्था कराओ, यदि आप पसंदगी की बात करते हो तो हमें पसंद करेगी तो ठीक है, शादी हो जाएगी, यदि पसंद नहीं करेगी तो शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, आपका शर्त मुझे मंजूर है। राजा ने कहा अपने पार्षदों से, मंत्रियों से, कि भाई ये तपस्वी को अंतःपुर में प्रवेश करने दिया जाए, जहां हमारी कुमारियां हैं। वो जाते हैं, उन्होंने सोच लिया था कि राजा क्या सोच रहा है, इसलिए वो बहुत बढ़िया सुंदर रूप बना लिया, राजकुमार की तरह से इतना सुंदर रूप बनाया कि राजा की जितनी लड़कियां हैं वो कह रही है कि पहले हमने इनको वरण किया है, पहले हमने इनको देखा है, हम शादी करेंगे। दूसरी कह रही है कि हम शादी करेंगे। तीसरी कह रही है हम शादी करेंगे। सबके सब लट्टू हो जाती है कि नहीं हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। राजा के पास आकर के जो सूचक है, सूचना देता है कि महाराज ये तो गजब हो गया, ये सबके सब जो है कन्याएं कह रही है कि हम महर्षि से शादी करेंगे। राजा ने कहा कि हम तो इसलिए भेजे थे कि ये वृद्ध है, कोई पसंद आएगा नहीं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये तो गजब हो गया। लेकिन ये इतनी हमारी पुत्रियां हैं, ये सबके सब कह रही हैं शादी करेंगे, तो एक महर्षि से तो एक ही का शादी होगा ना। लेकिन वो सबके सब तैयार हो गई कि नहीं, हम भी शादी करेंगे, हम भी शादी करेंगे। इस पर होता क्या है कि राजा कहते हैं तथास्तु, जब तुम सबकी इच्छा है तो हम तुम सबकी शादी महर्षि के साथ कर देते हैं, क्योंकि इनका जो अप्रतिम स्वरूप तपस्या, तपस्वी जो चाहे वो तपस्या के बल पर रूप धारण कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी को देखिए मच्छर का समान रूप धारण करके वो लंका में प्रविष्ट हो जा रहे हैं। जैसी इच्छा हो वैसे स्वरूप की प्राप्ति तपस्वी को हो जाती है। फिर राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि जो हमारी कन्याएं हैं यह महर्षि के आश्रम में कैसे रहेंगी, इनके लिए आप सुंदर सुंदर भवन बनवाओ, अच्छे अच्छे भवन, और वहां सारी व्यवस्थाएं राजमहल की तरह से कर डालो, जितनी कन्याएं हैं उन सब के लिए कर डालो, उन सब के लिए भवन बना दिया गया। उस भवन में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो नहीं रहा, जो आज हम लोग कई प्रकार के भोजन करते हैं ना, उसमें 6 प्रकार का बतलाया है, भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह पेय इत्यादि, जो है एक से एक ठंडा और एक से एक गर्म, और भोजनों में 56 प्रकार के व्यंजन। राजा की पुत्रियां हैं और इधर महर्षि तपस्वी, और वो राजकुमार का स्वरूप धारण करके हैं, सुख भोग करने के लिए गए हैं, तपस्या के बल से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। राजा को सद्वृत्ति आई, सब कुछ व्यवस्था कर दिया, सब सुख से रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा वहां पहुंचते हैं पता करने के लिए कि चलें जरा देखें कि हमारी बेटियों की क्या दशा है। तो वहां जाते हैं तो एक कन्या के पहले अपने कक्ष में जाते हैं और पूछते हैं, बेटी तू कैसी है? वो कह रही है कि मैं बहुत अच्छी हूं, अब तो तुमको घर का याद नहीं आता है? कहते हैं कि महर्षि हमको कभी छोड़े तब न हम घर जाएं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माता और मातृभूमि किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ जो महर्षि हैं वो हमें एक क्षण के लिए भी ये छोड़ते नहीं है, छोड़े तब न याद आए। सोचा कि दो पत्नियां हो तो पुरुष की हालत खराब हो जाती है, और ये इतनी कन्याओं के